जय धवला पुस्तक 13वी लेक्चर नंबर 17
ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम सदात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोये सौवसाहूणं उवने उमंगलं वो भवियजनाजिनवरसकमकमलजुहं जसकुलिसकलससत्य ससंख संख कुसादिलखणवर्यम।
यह श्री वीरसेन आचार्य की जय धवला टीका है जो कषाय पाउर तथा सुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके करता है गुंदर भट्टारक तथा इतिवृत्त आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में अभी हम संयमा संयम अर्थाधिकार देख रहे हैं। वैसे अर्थाधिकार ये 12वां है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 131 पर आ गए, 131। हमने ये बात देखी कि यहाँ जो चर्चा चल रही है वो वैदिक सम्यक्त्व के साथ सीमा सेम प्राप्त करने वाले की, या तो साधि मिथ्या दृष्टि वैदिक योग्य काल में 5वें में आता है, या चौथे वाला वैदिक सम्यक्त्व दृष्टि 5वें में आता है। तो दो करण से ही आता है, कौन से? पहले दो, अधःकरण और अपूर्वकरण। नहीं तो पहले दो के पश्चात वाले दो, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। उसके एक अंतर्मूर्त पहले से विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती बढ़ती चालू हो जाती है, और अपूर्वकरण अधःकरण अपूर्वकरण में क्या क्या बातें होती उसको हमने देखा था। एक है विशेषता, यहाँ गुण श्रेणी रचना नहीं होती, तब अपूर्वकरण। तो कब होती है? तो संयमा संयम के पहले समय से शुरू हो जाती है, अंतर्मूर्त प्रमाण गुण श्रेणी होती है वहाँ पर।
क्योंकि अंतर्मूर्त के लिए जाएगा तो उसको तो दो करण भी नहीं होगा।
अंतर्मूर्त के लिए जाएगा उसकी बात नहीं है, हाँ। जो अंतर्मूर्त के लिए नीचे गिरता है, हाँ। और अति शीघ्र वापस करता
तो
है, उसके लिए करण की जरूरत है। वो बिना करण, क्योंकि उसने स्थिति कांड स्थिति बंध वगैरह अधिक नहीं किया है। अभी अभी 5वें से आया है तो मिथ्यात्व तो में रहो या चौथे में रहा तो अति छोटे अंतर्मूर्त तक रहा।
जैसे कि हमने देखा था चौथे गुण स्थान में जो स्थितिबंध होता है वो तो अंतकोड़ा कोड़ी से ज्यादा होता ही नहीं है, तो वहाँ पे यथा योग ज्यादा बंद हो सकता है संतुलित वाले परिणाम
होगा ना, क्योंकि जिनका बंद हो रहा है अंतकोड़ा कोड़ी के भेद कितने हैं?
नहीं बराबर है। अच्छा, वो शुक्ल एशिया में जो कमी
की अपेक्षा चौथे में ज्यादा होगा कि नहीं होगा, उसकी बात है। लंबे काल तक चौथे में रहेगा तो यथा योग्य अधिक होगा, परंतु जो अतिशीघ्र दोबारा संयमा संयम प्राप्त करेगा तो उसके बिना करण के भी होता है। यहाँ एक बात हमने देखी, ये जो गुण श्रेणी होती है यानी शुरुआत में एक अंतर्मूर्त तो एकांत अनुवृद्धि वाला विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती रहती है, इसलिए वो स्थिति कांडक भी चलते हैं, यहाँ अनुभाग कांडक भी चलते हैं, स्थिति बंधापसरण भी चलता रहता है।
अपूर्वकरण के पश्चात
अंतर्मूर्त की
अपूर्वकरण के पश्चात
प्राप्त होने पर एकांत अनुवृद्धि बढ़ती है। एकांत अनुवृद्धि कब होगी? 5वें में आने पर होगी, तो वहाँ अंतर्मूर्त तक ये बातें बनी रहेगी, बाद में वो समाप्त हो जाती है। हाँ, वो स्वस्थान कहता है, या दूसरा क्या नाम है उसका? अधप्रवृत्ति। अधप्रवृत्ति संहिता संयत कहो या स्वस्थान संहिता संयत कहो, इसकी प्राप्ति होता है। यहाँ गुणश्रेणी तो चल रही है, गुणश्रेणी का आयाम भी फिक्स है, अवस्थित है। बात क्या होती है? कभी विशुद्धि होती है, कभी संकलित होते हैं, तो उसमें जो द्रव्य अपकर्षित होकर उसमें दिया जाएगा उसमें डिफरेंस होगा, परंतु जितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा वो तो संख्या फिक्स है। अंतर्मूल प्रमाण नीचे का एक एक निषेक गलत, ऊपर का एक एक निषेक उसमें प्रवेश करेगा। यहाँ तक तो हमने देखी थी 131 पृष्ठ पर। अभी नया जो सूत्र पढ़ेंगे, पहले हम ऊपर प्राकृत में, जदि संजमा संजमादो पड़िवदि दूण आगुंचाय मिच्छत्तम गंतुण तदो संजमा संजमम पड़िवज्जयि अंतो मुहूर्तेन वा विपकट्टेन वा कालेन तस्सवि संजमा संजमम पड़िवज्जमानयस्स एदानि चेव करणानि कादवानि। क्या कहना चाहते हैं? यदि कोई जीव आगुंजा वश, ये नया शब्द आया आगुंजा, अर्थात संक्लेश की बहुधता से प्रेरित हो, संयमा संयम से च्युत होता है और मिथ्यात्व को प्राप्त होकर तत्पश्चात अंतर्मूर्त काल से या विप्रकृष्ट काल से, लंबे काल से, प्रकृष्ट ने लंबा, विप्रकृष्ट विशेष प्रकृष्ट, संयमाशयम को प्राप्त होता है तो संयमाशयम को प्राप्त होने वाले उसके भी यही करण करणीय होते हैं। इसका अर्थ तो उसके भी दो करण हो गए। पहला कौन सा लिया था कि संयमाशयम से मिथ्यात्व में या चौथे में आया है और बाह्य किसी कारण के बिना आया है और अंतरंग जो कर्मों का विशिष्ट नियमित होगा और तुरंत अति शीघ्र ही फिर दोबारा प्राप्त करता है, उस जीव की बात है बिना करण के कर। क्या तो बिना करण के भी करते। अब यहाँ किसकी बात है कि संक्लेश अधिक होने के कारण जो मिथ्यात्व में आया, पांचों में उसके इतने संक्लेश है, मिथ्यात्व में भी आने पर वहां पर भी वो अधिक भी बंध करेगा, तो कहते उसके फिर वो सारे दो करण पूर्वक स्थिति कांडघात अनुभव कांडघात वगैरह पूरा प्रोसेस हो जाएगा। बाह्य केवल बाह्य निमित्त नहीं लेना, उस जीव ने संक्लेश बहुत ज्यादा किया, ये लेना अत्यंत संक्लेश के कारण यदि वो मिथ्यात्व में जाता है और अंतर्मूर्त के बाद भी अगर इमीडिएटली वो आता है तभी उसके दो करण हो गए। अभी इसका अर्थ तो कहेंगे अभी। हाँ,
अति संक्लेश परिणाम अंतरंग कारण से भी हो सकते हैं।
हाँ,
अंतरंग कारण से भी अति संक्लेश परिणाम हो सकते हैं।
हाँ, अंतरंग कारण है कर्मों का उदय होगा।
हाँ, कर्मों का। हाँ,
पर वैसे उस केवल कर्मों का उदय भी कैसे आएगा तीव्र अनुभाग सहित, यदि वो जीव शुद्धि में है तो तीव्र अनुभाग का उदय भी नहीं आएगा ना, वो तो दोनों निमित्त नैमित्तिक एक साथ होते हैं दोनों। हम कर्मों की तरफ से कथन करेंगे, वो तो अकेला कारण हुआ बाह्य। अभी कोई कहते किसी का पुत्र वियोग हुआ या जो कुछ हुआ बाह्य कारण के साथ वो, और उसकी इतनी दृढ़ता नहीं है तो तीव्र संक्लेश हो गए, इसे हम इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ क्या अर्थ बताते देखेंगे। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, यथा आगुंजा शब्द की व्युत्पत्ति है, आगुंजन आगुंजनम आगुंजा, आगुंजनम आगुंजा, संक्लेश ये स के ऊपर रफा आया वो बिंदी चाहिए, संक्लेश भर से भीतर ही भीतर उद्वेलित होना, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। हाँ, उद्वेलित होना यानी बहुत इसको कहेंगे शोभित हो जाना, तीव्र परिणाम हो जाना। इसलिए संक्लेश भर से प्रेरित हुआ जो जीव संयता संयत गुण से मिथ्यात रूपी पाताल में गिरकर फिर अंतर्मूर्त काल से या जिस काल के भीतर वेदक प्रायोग्य भाव नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे विप्रकृष्ट काल से, तो वेदक काल समाप्त होगा तो क्या होगा, वो वेदक योग्य काल समाप्त होगा तो क्या हो मंजूबे वेदक योग्य काल तो मिथ्या तो मैं कहते हैं, दोबारा अगर सम्यक तो प्राप्त करेगा तो वेदक ही करेगा सादी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि वहां उद्वेलना चल रही है सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या दृष्टि, पल्ले के असंख्यात भाग में वो दो प्रकृति मिथ्या तो रूप से दोबारा टर्न हो जाती है। यदि उस अवस्था में दोबारा सम्यक तो प्राप्त करेगा तो प्रथम उपशम करेगा, यहाँ वेदक की बात चल रही है। इसलिए विप्रकृष्ट काल में लंबा पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल लेना, जिसको हम वेदक योग्य काल कहते हैं, विप्र कृष्ण ने लंबा काल, कितना लंबा? वो अनंत अनंत काल वो वाला नहीं,
पल्ले
का पल्ले का संख्या का भाग जिसको वेदक योग्य काल कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वेदक प्रायोग्य भाव नष्ट नहीं हुआ, इसका अर्थ समझ में आए मंजू बहन? मिथ्या दृष्टि को वेदक प्रायोग्य काल कब तक होता है? जब तक सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति घटते घटते सागर प्रमाण नहीं हो जावे, सागर इतनी रह जाए तो तीनों को एक साथ वो उपशमित कर सकता है, उससे ज्यादा स्थिति हो दो प्रकृतियों की तो तीन को एक साथ उपशमित करने का कार्य नहीं हो सकता। तब तक समय तो होगा तो कौन सा होगा? तो वेदक होगा, इसको कहते वेदक प्रायोग्य काल। योग्य कहो प्रायोग्य कहो एक ही बात है, यहाँ लिखा नीचे वेदक प्रायोग्य भाव नष्ट नहीं हुआ है, यानी वो वेदक समय तो प्राप्त करने का काल उसका चल रहा है, मिथ्या दृष्टि है तो भी। तो ऐसे विप्रकृष्ट काल से अब क्या विशुद्धि को पूर्व कर, यानी पहले वहां पर भी पहले में पहले एक अंतर मुहूर्त तक विशुद्धि होगी बढ़ेगी, फिर संयमा संयम को प्राप्त होता है, संयमा संयम को प्राप्त होने वाले उस जीव के ये अनंतर पूर्व निर्दिष्ट किए गए दो करण करणीय होते हैं, ये दो करण पूर्वक की उसके संयमा संयम की प्राप्ति होगी, अन्यथा आगुंजावश बढ़ाई गई स्थिति और अनुभाव का घात नहीं बन सकता। आगुंजा ने उसके जो संक्लेश परिणाम हुए हैं, शोक हुआ है, उसके कारण उसकी स्थिति ज़्यादा बढ़ी है और अप्रशस्त कर्मों का अनुभाव भी अधिक बंधा है, तो उसका घात किए बिना उसको संयम संयम प्राप्त तो नहीं हो सकता, ये बात यहाँ बताने का। विशेषार्थ यहाँ पर जो संयता संयत अत्यंत संक्लेश परिणामों के कारण संयमा संयम गुण से चुप होकर मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हुआ है, वह यदि अंतर्मूर्त काल में या वेदक प्रायोग काल के भीतर दीर्घ काल के बाद, अंतर्मूर्त से लेकर दीर्घ काल लिया, पर अंतर्मूर्त किसने लिया? अति संकलेश वाले का लिया, पहला बिना करण वाले को कौन सा लिया? अत्यंत संकलेश नहीं थे यथायोग्य, वो तो हाँ मंद संकलेश थे, पहले गुणस्थान में आया, अति शीघ्र फिर दोबारा प्राप्त किया, उसके लिए बिना करण के भी मिला क्योंकि उसने स्थिति बढ़ाकर नहीं बांधी। तो कहते दीर्घ काल के बाद पुनः संयमा संयम को प्राप्त करता है तो अध प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण करके ही वह इस गुण को प्राप्त कर सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। और लंबा काल बीत गया तो प्रथम उपशम करेगा, यह स्पष्टीकरण यहाँ पर किया गया। चौथे अति मिथ्यात्व की बात तो हाँ इसने ली थी, अत्यंत संकलेश हुआ है तो मिथ्यात्व में जाने वाले की बात। हाँ वो अतिशीघ्र करने वाले के चौथे में भी भेजा, हाँ यहाँ मिथ्यात्व मिला है। हाँ इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा संयमा संयम लब्धि का कथन समाप्त करके, वहाँ चौथे में इतना ही लेना, आते हैं लंबे काल तक चौथे में रहा हो वहाँ भी ले सकते हैं, चौथे में बहुत लंबे काल तक रहा हो
तो वापस,
क्योंकि हमने देखा था ना क्योंकि दो चौथे से जाने वाले के भी दो करण होते हैं, वो तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि के वो वेदक प्रायोगिक काल बताना था और अंतर्मूर्त की बात बताने के, बहुत अत्यंत तीव्र संकलेश हुए थे उस कारण। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा 132 पेज पर 49 नंबर का पॉइंट संयमा संयम लब्धि का कथन समाप्त करके अब प्रकृत अर्थ विषयक पद विशेषों से, पद विशेष पद यानी वर्ड शब्द, पद विशेष यानी कोई विशिष्ट जो पद आए हैं, यहाँ शब्द आए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी आई है, उससे संबंध रखने वाले अल्प बहुत्व दंडक का पदपूर्ति रूप बीज पदों का अवलंबन लेकर कथन करते हुए तद विषय ही प्रतिज्ञा वाक्य को कहते हैं। यानी यहाँ जो कोई अलग अलग बातें बताई हैं कि किसका काल कितना है, वो छोटा है कि बड़ा है, उसकी बात यहाँ बताएंगे। जैसे पहले हमने साइड समय तो में भी अल्पबहुत्व देखा था, वैसे यहाँ पर भी बताएंगे। अल्पबहुत्व, अल्प यानी थोड़ा, बहुत्व यानी बहुत। पहले में पहले किसका काल छोटा है, किसका उससे ज़्यादा है, किसका उसके संख्यात गुना है कि थोड़ा ज़्यादा है कि असंख्यात गुना है, वो बात यहाँ बताएंगे। अब पहले सूत्र पढ़ेंगे हम ऊपर। तदो एदिस्से परुवणाए समत्ताए, यानी यह जो प्ररूपणा समाप्त होती है, संजमा संजमम परिवज्यमाणगस पढ़म समय अपूवकरणादो, यानी जो संयमा संयम प्राप्त करने वाले जीव के, ये कहाँ से ये अल्पभूत बताएंगे, अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर पढ़म समय अपूवकरणादो, जाव संजदा संजदो एयंतानु वड्डिये चरित्ता चरित्त लब्धिये वड्डदी, यानी संयमा संयम के जो एकांत अनुवृद्धि रूप वृद्धि होती है, एदम्मी काले वहां तक लेना, इतने काल में अल्पभूत्व, कौन सा स्थिति कांडक का आयाम छोटा होगा या काल छोटा होगा, कहाँ अनुभव कांडक का आयाम छोटा या बड़ा होगा, उसकी बात यहाँ करेंगे। एदम्मी काले ने इतने काल तक स्थितिबंध स्थिति संत कम्मम, स्थितिबंध स्थिति संत कम्मम मैंने स्थिति सत्कर्म, सत्ता का सत्ता की स्थिति, सत्व स्थिति कहेंगे या स्थिति सत्व कहेंगे। स्थिति खंड यानम यानी स्थिति कांडक का, जघन्य उत्कर्ष यानम आवाहनम यानी स्थिति कांडक को हमने जघन्य उत्कृष्ट बताएंगे, आबाधा का जघन्य उत्कृष्ट बताएंगे। आवाहनम जघन्य उत्कर्ष यानम उत्कीर्ण धानम यानी उत्कीर्ण का काल, एक एक कांडक घात होने के लिए काल जितना लगता है उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं। जहन्य उत्कृष्ट उसमें भी जहन्य उत्कृष्ट बताएंगे। अन्य सिंच और अन्य भी पदानम अप्पा बहुम वत्त इस्सामो, अन्य भी पदों का अल्प बहुत्व मैं बताऊंगा, ऐसे आचार्य प्रतिज्ञा करते। हिंदी में पश्चात इस प्ररूपणा के समाप्त होने पर संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीव के अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर, यानी उन्होंने लिमिट बताई यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें अल्प बहुत, पूरी संसार अवस्था में कहाँ कितना ज़्यादा उसकी बात नहीं यहाँ पर, इस विशिष्ट जो काल है उतने काल में विशिष्ट कालों का अल्प बहुत बताएंगे। कहाँ से लेकर, तर अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर एकांत अनुवृद्धि रूप विशुद्धि के निमित्त से, शुरुआत में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है हर समय अनंत गुणी, तो उस विशुद्धि के निमित्त से चरित्ता चरित्र लब्धि अर्थात संयमा संयम लब्धि की वृद्धि होने तक, वृद्धि होने तक यानी उसकी वृद्धि होने, एकांत वृद्धि का अंतिम समय लिया होगा मेरे ख्याल से, इस काल के भीतर जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबंध यानी कौन सा अल्प है कौन सा बहुत वो कहेंगे, वो किस पॉइंट पर होता है वो भी कहेंगे। स्थिति सत्कर्म यानी सत्ता वाली स्थिति और स्थिति कांडकों का, जघन्य और उत्कृष्ट आबाधाओं का, जघन्य और उत्कृष्ट उत्कीर्ण कालों का तथा अन्य पदों का अल्प बहुत को बतला देंगे। ये तो पहले मैं बताऊंगा इस तरह से प्रतिज्ञा की, अब अल्प बहुत तो आगे के सूत्र से बताएंगे। यह प्रतिज्ञा वाक्य सुगम है, इतनी विशेषता है, यहाँ पर चरित्ता चरित्र लब्धि ऐसा कहने पर संयमा संयम लब्धि का ही यह पर्याय निर्देश है, यानी पर्यायवाची शब्द है, निर्देश यानी कथन, पर्याय का कथन यानी एक ही अर्थ में हम दो अलग अलग शब्द यूज करते हैं तो ये उसी के लिए शब्द आया हुआ, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देश चारित्र लब्धि की उस संज्ञा के प्राप्त होने में विरोध का अभाव है, यानी देश चारित्र को चरित्र चरित्र कहने में कोई दोष नहीं है, ये बात बताना चाहते। तम जहाँ वह जैसे, यानी मैं ये अल्प बहुत वो करूँगा तो ये इस प्रकार, इस तरह से वहाँ एक सूत्र बता दिया। यह पृच्छा वाक्य सुगम है, अब यहाँ से 1 2 3 4 हम नंबर भी डालेंगे, उन्होंने शायद लिखे होंगे। हाँ उन्होंने लिखे हैं लास्ट में। पहले हम प्राकृत में पढ़ेंगे। सौवत थोवा जघन्या अनुभाग खंडय उत्कीर्णधा। जघन्य अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल सबसे स्तोक है। अनुभाग कांडक भी छोटा है और उसके लिए घात करने के लिए जितना काल लगता है अंतर्मुहूर्त, वो भी काल छोटा है। कांडक यानी कितने अनुभाग में, तो कितने स्पर्धकों का नाश किया उसको हम कांडक कहेंगे। और वो करने के लिए कितना काल लगा, क्योंकि एक समय में तो नहीं होता है, तो उस काल को उत्कीर्ण काल कहेंगे। अब ये जहाँ जघन्य लिया, अनुभाग कांडक जहाँ जघन्य होगा या स्थिति कांडक जहाँ जघन्य होगा, उसका अर्थ क्या है? हमने कहाँ से कहाँ शुरुआत की है? अपूर्वकरण से लेकर एकांत अनुवृद्धि के अंत तक। तो जहाँ विशुद्धि ज्यादा वहाँ कांडक छोटा होगा और उसका काल भी छोटा, क्योंकि शुरुआत में अनुभव ज्यादा था तो वहाँ कांडक भी बड़ा था, उसके लिए काल भी ज्यादा लगता था। लास्ट में कांडक भी छोटा होगा, उसका उत्कीर्ण काल भी जगह नहीं होगा। तो पहले यहाँ उत्कीर्ण काल की बात करें, आयाम की बात बाद में करेंगे। तो कहते जघन्य अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल सबसे स्तोक है, इसको एक नंबर पर ले लिया उन्होंने। तो कहते एकांत अनुवृद्धि काल के भीतर जो अंतिम अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल है, क्योंकि वो भी अंतर्मुहूर्त तक होगा, तो अंत समय में तो नहीं होगा पर लास्ट लास्ट में हो जाएगा ये, उसे यहाँ सबसे जघन्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। अब आगे के पॉइंट बताएंगे 2 नंबर का। उपकस्य अनुभाग खंडय उत्कीर्णधा विशेषाह्या, उससे उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल विशेष अधिक है। अब ये तो जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ जघन्य हुआ, और इतनी रेंज में देखा ना, तो उत्कृष्ट कहाँ होगा? शुरुआत में, अपूर्वकरण के शुरुआत में। फिर भी वो संख्यात गुणा नहीं कहा पाए, विशेष अधिक है। उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल विशेष अधिक है। अपूर्वकरण के प्रथम अनुभाग कांडक विषयक यह उत्कीर्ण काल ग्रहण करना चाहिए। देखो ग्रहण करना चाहिए का अर्थ होता है जानना चाहिए, ग्रहण करना है जानना। ज्ञान ग्रहण करता है या छोड़ता है? यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करना है। किससे ग्रहण करेगा? हाथ पैर से, मुंह से?
ज्ञान से।
ज्ञान से तो समय सार में बात आती है ना, राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। तो हम क्या करना चाहते हैं? राग को छोड़ना चाहते हैं। कैसे छोड़ेंगे? ग्रहण ज्ञान से करते हैं और छोड़ते किससे?
स्वभाव को।
ज्ञान से ना उसको जान रहे थे, उसको अपना मान रहे थे, अभी उसको उसको जानना
छोड़
को
जानो,
उसका लक्ष्य छोड़ दो, उसको कहते राग को छोड़ो। तो हम पहले राग कम करना चाहते हैं। ये शास्त्र की भाषा मालूम नहीं हो ना तो ये ऐसी गड़बड़ी होती है। हाँ देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। जघन्य अनुभाग कांडक उत्कीर्ण हुआ, फिर दूसरे पॉइंट पर उत्कृष्ट हुआ। आगे जहन्निया ठिदिखंडय उत्कीर्णद्धा जहन्निया ठिदिबंधगद्धा च दोवितुल्लाओ संख्यज गुणा, उससे जघन्य स्थित हुआ स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल की करना रस्वती, और जघन्य स्थितिबंध काल ये दोनों तुल्य ने इक्वल समान होकर संख्यात गुणे हैं, क्योंकि संख्यात गुणा क्यों है? हमने देखा एक एक अनुभाग कांड घात होता है ना, ऐसे एक स्थितिबंध के काल में हजारों अनुभाग कांड, यानी इसके लिए जितना काल लगेगा उसके हजारों गुना उसका काल होगा, इसलिए संख्यात गुणा का। संख्यात गुणा यानी कितना? हजारों जितने कांडक होते उतने गुना कर देना। एकांत अनुवृद्धि काल की अंतिम अवस्था के इन दोनों को ग्रहण करना चाहिए, यानी जघन्य स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल कब होगा? वही एकांत अनुवृद्धि के लास्ट
कांडक।
केवल स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल ही नहीं लेना, स्थिति बंध काल भी लेना, क्योंकि कोई एक विशिष्ट स्थिति बंध लगातार अंतर्मुहूर्त तक उतना का उतना रहता है, देखो देखो स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल, उत्कीर्ण काल ने स्थिति कांडक घात होता है उसके लिए कितना लगेगा? अनुभाग कांडक घात के लिए मान लेते 10 समय लगे, और ऐसे 25 अनुभाग कांडक हुए तब एक स्थिति कांडक घात पूर्ण हुआ तो उसके लिए कितने समय लगेंगे? 250 है ना, तो उसके संख्यात गुणा हो गया, इसका उत्कीर्ण काल संख्यात गुणा। अब वहां पर जो स्थिति बंद हो रहा है वो लगातार 250 समय तक उतना का उतना स्थिति बंद होगा। हमने देखा ना उतना उतना होकर बाद में घट जाता तो उसको कहेंगे स्थिति बंध का काल। काल की बात है, स्थिति बंध कितना हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही। स्थिति बंध यथायोग्य अंत कोड़ा कोड़ी जो होगा उसकी बात यहाँ नहीं हो रही।
समान स्थिति,
समान स्थिति बंध कितने काल तक चलेगा उसको स्थिति बंध काल कहते हैं। ख्याल में आई बात अभी? तो वो दोनों क्या है? समान है, परंतु उतने एक काल में हजारों बार अनुभाग कांडक घात होते हैं। इसलिए सेकंड पॉइंट पर जो हमने उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का काल देखा उससे ये जघन्य स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल भी संख्यात गुना है। और वो कहाँ होता है जघन्य वाला स्थिति कांडक? तो एकांत अनुबुद्धि के लास्ट में, जहाँ विशुद्धि ज्यादा। उपकस्याओ विशेषायाओ, उनसे पूर्वोक्त उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। पूर्वोक्त है ना स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध काल, जो हम उत्कृष्ट ले रहे हैं वो विशेष अधिक है। वो कहाँ पर होगा? अपूर्व करण के पहले, क्योंकि अपूर्व करण के प्रथम स्थिति कांडक और स्थिति बंध के कालों का यहाँ अवलंबन लिया गया है, यानी उसकी बात यहाँ ले रहे हैं क्योंकि उस समय वो उत्कृष्ट है। ये चार पॉइंट हो गए अपने, आगे पढ़ेंगे। पढ़म समय संजदा संजद पहुड़ी जम एगंतानुवड्ढी वड्ढति चरित्ता चरित्त पज्जय ही ऐसो वड्ढी कालो संख्य जगुनो। अब यहाँ कुछ अलग बात बताएं, एकांत वृद्धि का जो काल है उसकी बात बताएं। लगातार कितने समयों तक एकांत वृद्धि होती रहेगी उस काल का यहाँ जिक्र किया है। हिंदी में पढ़ेंगे। उनसे, उनसे ने जो उत्कृष्ट स्थिति कांडक काल
उससे
और उतना ही स्थिति बंध काल, इसलिए उनसे कहा, दोनों समान है ना। उनसे संयता संयत के प्रथम समय से लेकर एकांतानुवृद्धि के द्वारा चारित्रा चारित्र पर्याय रूप से जो वृद्धि होती है वह वृद्धि काल संख्यात गुना है। अपनी भाषा में एकांत अनुवृद्धि का जो वृद्धि काल जो है वो इससे संख्यात गुना है, क्योंकि उस वृद्धि काल में संख्यात बार यानी हजारों बार तो स्थितिकांड घात होता है, इसलिए वो काल उससे संख्यात गुना ये सिद्ध होता है। यह एकांतानुवृद्धि काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण ही है, क्योंकि इस काल में संख्यात हजार स्थिति कांडक काल और स्थिति बंधक काल होते हैं, इतनी बार इसका घात होता है इसलिए वह संख्यात गुना हो जाता है। कारण समझ में आया ना? अब आगे अपूर्व करण धा संख्य जगुना, उससे अपूर्व करण का काल संख्यात गुना है क्योंकि वो भी अंतर्मूल प्रमाण ही है। तो गुणकार क्या है? गुणकार ने संख्यात गुणा की कितने, चार गुणा है कि 10 गुणा है कि 20 गुणा है, तो इसको गुणकार पूछते हैं। तो कहते तत्प्रायोग्य संख्यात अंक गुणकार, यथायोग्य जो भगवान ने जाना है इसलिए कहते तत्प्रायोग्य। यहाँ पर अनिवृत्तिकरण काल नहीं है क्योंकि यहाँ अनिवृत्तिकरण होता ही नहीं है, उच्चम समय क्योंकि काल में होता है इसलिए अल्पभूतों में इसको नहीं लेंगे, इसलिए तद विषय कल्पभूतों का विचार नहीं किया। अब उससे आगे की बात पूछेंगे। जहन्या संजमा संजमद्धा सम्मतद्धा मिच्छतद्धा संजमद्धा असंजमद्धा सम्मा मिच्छतद्धा च एदाओ छप्यद्धाओ तुल्लाओ संख्यज गुणाओ। स्पष्ट रूप से अभी ये बात आ गई है सबका जो जगन्य काल है वो समान अंतर्मुहूर्त है, कुल्ला कह दे ना। वो मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको बताऊंगी, हिंदी में देखो पढ़ेंगे पहले। कहते उससे, ये अपूर्व करण का जो संख्यात गुणा अंतर्मुहूर्त है उससे जगन्य संयमा से हम काल, कोई जीव मिनिमम काल पांचवें गुण स्थान में रहेगा फिर वहां से गिर जाए या ऊपर भी चल सकता है, तो उसका मिनिमम जो अंतर्मुहूर्त है और सम्यक्त्व का काल यानी जगन्य सम्यक्त्व का काल, कोई मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में आया तो कम से कम कितने काल तक रहेगा वो अंतर्मुहूर्त काल। तीसरा मिथ्यात्व का जगन्य काल, जगन्य कब कहेंगे
सम्यक्त्व से,
मिथ्यात्व का काल जगन्य या उसको से कैसे कह सकते हैं, जो अनादि से आया है उसको अनादि से, वो तो अनंत काल है। हाँ बहुत अच्छा, एक बार सम्यक्त तो होके मिथ्यात्व में आया है और तत्काल वो वापस सम्यक्त्व तो प्राप्त करेगा तो वो मिथ्यात्व का जघन्य काल कहलाएगा, तो वो भी जघन्य काल। और क्या बात बताई, संयम काल यानी जघन्य संयम काल, किसी ने संयम प्राप्त किया एक छोटे अंतर्मुहूर्त में वापस वो असंयमी बन गया तो वो जघन्य संयम काल। असंयमी बना है ना, पांचवें में जा सकता है या चौथे में जा सकता है, पहले में जा सकता है। अब कहते हैं असंयम काल, असंयम में रहने का मिनिमम काल यानी कोई संयमी थे असंयमी आ गए वापस संयम प्राप्त, उसको असंयम का काल कहें। और सम्यक मिथ्यात्व काल, तीसरे गुणस्थान का जगन्य काल, ये छह काल परस्पर तुल्य होकर संख्यात गुणे हैं। हम ऐसा सोचते हैं ना, मिथ्या तो रहने का छोटा काल होगा तो सब जगह सबको तुल्य बता दिए,
तो ये जो दूसरे गुण स्थान में जाता है उसकी अपेक्षा सम्यक्त्व का काल दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सम्यक्त्व में जो अंतरकरण करके वो अंतर में रहने का काल दिया है कि सम्यक्त्व में रहने का काल, सम्यक्त्व का उदय के साथ जो काल है वो लेना है कि अनुदय होके जो काल होता है
अनुदय इसका सम्यक तो छूट
नहीं, तीनों नहीं, तीनों प्रकृति का उदय नहीं है, सम्यक तो मिथ्या तो
समय कहाँ की बात चल
जो प्रथमोक्षम करके
आपको ऐसा कहना है, प्रथमोक्षम का ये जगन्य काल लेना है कि वेदक का जगन्य काल लेना है, यही आपको पूछना है। क्या पूछना,
मैं वही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो बताया वो
जगन्य काल बताया है वो प्रथमोक्षम का है क्या वेदक का है, ऐसी तो यहाँ कोई अलग से बताया नहीं, यहाँ तो बस सम्यक का काल इतने बात बताई, यहाँ वेदक सम्यक्त्व की बात है परंतु यहाँ इन जनरल ये छह बातें बता रहे, सम्यक्त्व में रहने का मिनिमम का इतनी बात उन्होंने बताई। शंका, वेदक लगता है क्योंकि उपशम का काल बड़ा होगा ऐसा लगता है, अल्पभूतों में जो हमने देखे थे ना उसमें उपशम का काल क्यों संख्या होना लगता है, देखो यहाँ अपूर्वकरण से कंपैरिजन के लिए, अपूर्वकरण के काल से ये संख्यात गुणा है और वहाँ अपूर्वकरण निवृत्तिकरण और कुछ वो लेके फिर वो अंतर का काल बहुत बड़ा था उनसे, और अंतर में भी उपशम का काल, अभी उसकी झंझट में नहीं पड़ेंगे हम, कहीं
अपूर्वकरण
अभी उसकी बात हम नहीं सोचेंगे यहाँ पर ये विषय छूट कर, क्योंकि यथायोग्य उसका कहीं आता है एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे कि उपशम सम्यक्त्व का मिनिमम काल छोटा है कि वेदक का है, ऐसी तो चर्चा अभी नहीं चली है। ये छह काल कौन कौन से बताए, संयमा संयम का जघन्य काल, सम्यक्त्व का जघन्य काल, मिथ्यात्व का जघन्य काल, संयम का, असंयम का और सम्यक मिथ्यात्व। अब शंकाकार पूछ रहे इन, हाँ जब सम्यक्त्व कहते हैं तो सम्यक दृष्टि रहना है, असंयम में आप वो पहले में भी हो सकता है, दूसरे में, तीसरे में, दूसरे की बात नहीं है फिर भी तीसरा चौथा तो ले ही सकते हो, उसमें असंयम के चार गुणस्थान है उसकी अपेक्षा नहीं है असंयम में रहने का, क्योंकि दूसरे का भी लेंगे तो भी पहले में जाने ही वाला है वो असंयम का असंयम ही रहेगा, यदि दूसरे में जाके वापस आता तो हम दूसरे का काल अलग से देख सकते,
नहीं तो दूसरे में जाता है वो असंयम ही है,
वही तो बात
तो चौथे में से जो उपशम सब्जेक्ट के साथ तो दूसरे में जाएगा,
पांचवे में नहीं जा सकता, पांचवे में से
नहीं, नहीं बराबर है
संयम, हाँ। असंयम में से भी तो जा सकता है, छठे में से भी जा सकता है, तो जाके वहाँ से पहले मैंने असंयमी में से दूसरे असंयमी है, पहला वाला भी असंयमी है।
नहीं, तो मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरे में जाने वाला तो असंयमी ही होगा।
नहीं, दूसरे में जाने वाला की बात कर रहे हैं।
हाँ, तो दूसरे में तो चौथे से ही जाएगा।
नहीं, ये मत लगाओ, चौथे से जा सकता है, पांचवे से जा सकता है, छठे से जा सकता है।
हाँ,
कंडीशन क्या है, ऑप्शन समय होना चाहिए,
सॉरी
है ना।
हाँ,
चौथे से जाने वाला असंयमी का असंयम रहा। हाँ, पांचवे से जाने वाला असंयम संयमासंयम से
असंयम होगा, और संयम से
छठे से जाने वाला संयम से असंयम हुआ। परंतु असंयमी होकर वहाँ से वापस नहीं लौट सकता है।
हाँ, पहले में जाएगा,
तो वो पहले में जाएगा और वापस आएगा पांचवे में या छठे में, सातवें में, छठे में, तो उसको कहेंगे असंयम का काल। वो असंयम में उसको सब इंक्लूड कर सकते। तो कहते हैं चोक यवन्य काल का सदृशपना कैसे जाना जाता है, कहते इसी सूत्र से जाना जाता है, क्योंकि सूत्र ही प्रमाण है ना। और यहाँ स्पष्ट रूप से इतना स्पष्ट बता दिया उन्होंने, इतनी स्पष्टता से कहीं बात नहीं आई थी अभी तक। इसलिए ये छह काल परस्पर सदृश होकर अपूर्व करण के काल से संख्यात गुणे हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। हाँ, सातवां छठा दोनों हो लेना। हाँ, अपूर्वकरण है यहाँ का करण लेना। अभी यहाँ जो लिमिट बताई है, सेमा सेम प्राप्त करने वाले अपूर्वकरण से एकांत वृद्धि तक, इसकी बात चल रही है। नहीं नहीं, गुणस्थान की यहाँ, उस गुणस्थान की यहाँ चर्चा नहीं है, उसकी उस श्रेणी में जब बात आएगी तब उसकी अल्पभूत कहेंगे, यहाँ का नहीं। अब आगे कहते हैं गुणश्रेणी संख्यज गुणा, उनसे गुणश्रेणी संख्यात गुणी है। यहाँ पर गुणश्रेणी ऐसा सामान्य निर्देश करने पर भी प्रकरणवश संयमासंयम गुणश्रेणी ही लेनी चाहिए, श्रेणी कहना श्रेणी, क्योंकि यहाँ संयमासंयम की बात हो रही है ना। गुणश्रेणी तो बहुत जगह होती है और उसका आयाम अलग अलग होता है, यहाँ यहाँ की गुणश्रेणी लेनी, क्योंकि गुणश्रेणी कितनी होती है, इसका प्रमाण क्या है।
नहीं, क्या पूछा,
गुण श्रेणी का आयाम कितना लंबा होगा,
अंतर्भूत कमाल होता है ना, हमने अब
कितना बड़ा अंतर्भूत, कितने प्रमाण निषेकों में हो जाएगा, उसका काल कितना होगा। देखो, पांचवे नंबर पर एकांत वृद्धि का काल लिया, अपूर्वकरण का काल उससे संख्यात गुणा लिया,
और
उससे संख्यात गुणा ये जघन्य काल लिया, और उससे संख्यात गुणा गुणश्रेणी, गुणश्रेणी
बहुत लंबी है,
बहुत लंबी है, क्योंकि यही गुणश्रेणी बाद में भी रहने वाली है, एकांत वृद्धि समाप्त होने पर भी जब तक पांचवा गुणस्थान है इसकी गुणश्रेणी चलेगी, वो लंबी है। उसका आयाम पूर्व के जघन्य काल से संख्यात गुणा है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है। समाधान, इसी सूत्र से जाना जाता है। तो कहते जघन्य आबाधा संख्य गुणा, संख्यज गुणा, उनसे उससे जघन्य आबाधा संख्यात गुणी है। नौ नंबर, आबाधा किसकी बात चलेगी यहाँ पर, बंद की। ये कब का बंद चलेगा, अभी हमारी बात अपूर्वकरण से लेकर एकांत वृद्धि के अंतिम समय तक है। तो आबाधा कम कब होगी, जब बंद छोटा होगा। तो इसमें बंद यहाँ कम होगा कि यहाँ कम होगा, स्थिति बंद, स्थिति बंद कहाँ कम होगा, स्थिति बंद यानी स्थिति कम बंधना। तो जहाँ विशुद्धि कम है वहाँ स्थिति बंद बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा, और जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ स्थिति बंद लंबा होगा। हम उल्टा उल्टा होगा, उल्टा होगा, इसीलिए पूछा। तो अपूर्वकरण के शुरुआत में जितनी विशुद्धि थी उससे एकांत वृद्धि के अंतिम समय में विशुद्धि बहुत ज्यादा हुई है, अनंत गुना बढ़ती गई है। तो बंद भी यहाँ पर छोटा है इसलिए उसकी आबादा भी यहाँ छोटी है। हम अल्प से बहुत वो और जा रहे इसलिए पहले जघन्य आबादा यहाँ पर लेना। तो कहते एक आबादा का आबादा काल हमने देखा ना, जिस समय नहीं जिस समय बंद होता है तो उसकी जो निषेक रचना होती है, तो आबादा काल तक तो कोई निषेक वहाँ नहीं पाए जाते, बाद में उसकी निषेक रचना होती है, यानी उदय की अपेक्षा वहाँ कोई उदय नहीं हुआ, यहाँ बंद हुआ। तो ये कर्म इस तरह से जो ग्रहण किए हैं उसका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आबादा काल। हम हमेशा कहते हैं ना सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का जहाँ बंद होता है वहाँ 7000 वर्ष की आबादा होती है, वहाँ की बात है, यहाँ वो मिथ्यात्व का बंध नहीं है, यहाँ बंधने वाली प्रकृतियों की बात है। संयमासंयम में मोटे तौर पर कौन कौन सी प्रकृतियाँ बंध रही है, मोहिनी की बात है। आप कहेंगे संजीव भाई पांचवा गुणस्थान वाला है, मोहिनी की कितनी प्रकृतियाँ यहाँ बंध रही है, कौन सी? मोनी प्रत्याख्यान की 4, संज्वलन की 4 और नौ कषाय की 5, कौन से 5 बंधेंगे? नहीं हास्य रथी कहूँ क्योंकि एकांत अनुवृद्धि वाला चल यहाँ, तो तब तक तो उसके हास्य रथी बंधेंगे और भैजुगे और क्या 3 वेद में से 1 वेद बंधेगा, क्या अकेले पुरुष वेद बंधेगा? क्यों? बहुत अच्छा, नपुसक वेद की बंधविच्छुति पहले में हुई, स्त्री वेद की बंधविच्छुति दूसरे में हुई, ये सम्य दृष्टि नहीं, पांचवें गुणस्थान वाला सम्य दृष्टि, तो उसके तो पुरुष वेद का ही बंध होगा। यहाँ उदय की बात नहीं चल रही, बंध की बात है। तो इतनी बंध रही, अब बाकी ज्ञानावरण भी बंध रही है, दर्शनावरण कितनी बंधेगी अश्विन भाई?
6
बंधेगी, अंतरा की 5 बंधेगी, साता वेदिनी बंधेगा, उच्च गोत्र बंधेगा, नाम की यथा योग्य बंधेगी, शुभ प्रकृतियां बंधेगी अभी यहाँ पर। अब आगे तो यहाँ कहते हैं जघन्य आबादा में एकांत अनुवृद्धि काल के अंतिम समय में होने वाले बंध की यह आबाधा लेनी चाहिए। आबाधा ने आबाधा काल याद आए ना, आबाधा काल किसको कहना तेजल? हाँ पूछना ऐसा। अच्छा शेष कथन सुगम है, उपकस्य आवाह संख्येज्य गुणा कहते उससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यात गुण, क्योंकि वहां बंध भी संख्यात गुणा हो रहा है। ये जो एकांत वृद्धि के अंत समय में जितना बंध है, अभी हम लौट कर नीचे आ रहे हैं अपूर्वकरण के पहले समय में, वहाँ बंध ज़्यादा है, भले दोनों जगह कितना है तो कहेंगे अंत कोड़ा कोड़ी सा, परंतु यहाँ से यहाँ वाला बंध संख्यात गुणा है तो आबादा भी संख्यात गुणा हो जाएगा। अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्राप्त बंध विषय आबादा का यहाँ अवलंबन लिया गया है, यह भी अंतर्मूर्त प्रमाण ही होकर, क्योंकि जहाँ अंत कोड़ा कोड़ी सागर होती है आबादा अंतर्मूर्त ही होती है, परंतु उस अंतर्मूर्त से यह अंतर्मूर्त संख्यात गुणा बढ़ा है।
यहाँ पे मोनी का 17 का बंद हो रहा है।
हाँ
मोनी का 17 का बंद हो रहा है,
क्यों?
अपूर्वकरण है ना, चौथा गुणस्थान है।
अच्छा अपूर्वकरण की बात। हाँ। अपूर्वकरण में बता रहे।
अच्छा चौथा या
हाँ अपूर्वकरण पूर्व के गुणस्थान में, कोई पहले से आएगा
17 का भी बंद होगा या 22 का भी बंद होगा,
यह भी अंतर्मूल प्रमाण ही होकर पूर्व की आबादा से संख्यात गुणी है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। जो कोई प्रकृतियाँ बन रही है वो ज्ञानावरण दर्शन सब में लगाए, उस प्रपोर्शन में अंत कोड़ा कोड़ी सागर है और उसकी आबादा अंतर्मूर्त है परंतु वो संख्यात गुणी है। जहन्नयम थिदिखंडयम असंख्येज्य गुणम उससे जघन्य स्थिति कांडक असंख्यात गुणा, देखो पहले तीसरे पॉइंट पर कौन सा लिया था निकाल के देखो तेजल, तीसरे नंबर पर क्या लिखा था?
उत्कीर्ण का।
सोचने दो, देखो ये पेज नंबर 133 में जहाँ 54 नंबर लिया ना उसके ऊपर का सूत्र क्या लिखा है? मैंने अनुभव किया उसके नीचे स्थिति कांडक क्या उत्कीर्ण काल, और यहाँ क्या लिखा है? स्थिति कांडक, उसमें डिफरेंस क्या है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्थिति कांडक यानी ये सत्ता की स्थिति पड़ी है इसे इतने, तो इसका भी कांडक होगा यानी कांडक घात हो जाएगा तो क्या होगा? उतने इतने स्थिति पकड़ी उसने, इसको नीचे लाकर ये स्थिति का घात करने वाला, तो जितने निषेकों का घात होगा उसको कहेंगे कांडक, वो कांडक का प्रमाण कितना होगा पल्ले की संख्या पे वाक्य में, परंतु वो कांडक पूर्ण होने के लिए कितना समय लगेगा एक अंतर में। वहां तीसरे नंबर पर जो दिया था जघन्य स्थिति कांडक उत्करण काल या उत्कीर्ण काल, वहां काल की बात है कितने समयों में ये काल कार्य होने वाले, मान लेते 10 समय लगे, और कितने निषेकों का अभाव करने वाले हैं उसको कहेंगे कांडक का प्रमाण या कांडक का आयाम। तो ये कितना लिखा है यहाँ पर? असंख्यात गुना यहाँ लिखा ना, उससे जघन्य स्थिति कांडक असंख्यात गुना है 135 पृष्ठ पर जो 62 नंबर का अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके ऊपर का सूत्र पढ़ लिया। क्योंकि जो उत्कृष्ट आबाधा थी वो कितनी थी? एक अंतर में। अब यहाँ कांडक कितने होगा? कांडक का प्रमाण पल्ले का संख्यात वा भाग, जो असंख्यात असंख्यात वर्ष उसमें पाए जाते, तो बहुत बड़ा काय। तो कहते पूर्व सूत्र निर्दिष्ट यानी सूत्र में बताया हुआ, कौन से? पूर्व के सूत्र में बताया हुआ यानी ऊपर 61 नंबर में जो बताया था, कौन क्या बताया था? उत्कृष्ट आबाधा अंतर्मूर्त प्रमाण है, किंतु यह यानी यह जघन्य स्थिति कांडक एकांत अनुवृद्धि के अंतिम समय में होने वाला, उसका प्रमाण क्या है? कांडक का पल्लोपन के संख्यात विभाग प्रमाण जघन्य स्थिति कांडक लिया गया है, इसलिए असंख्यात गुणा हो गया है एज कंपेयर टू एक अंतर्मूर्त, वो काल कितना है? पल्ले का संख्यात भाग, तो असंख्यात गुणा है क्योंकि पल्ले के असंख्यात भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते, यहाँ तो पल्ले का संख्यात भाव ने और बड़ा प्रमाण लिया, तो ये असंख्यात गुणा तक आ गए हैं। पहले अंतर्मूर्त में थे हम 10 पॉइंट तक, 11वें पॉइंट में भी पल्ले के संख्यात भाग तक आ गए। अब आगे कहते हैं अपूर्व करणस्य परमम जहन्नयम थिदिखंडयम संकेज गुणम, लौट कर नीचे आ गए। पहले क्या कहा था? एकांत वृद्धि के अंत में होने वाला वहां का जघन्य स्थिति कांडक उन्होंने लिया है पल्ले का संख्यात भाग। अब लौट कर अपूर्व करण के शुरुआत में, तो यहाँ उत्कृष्ट कहना था वहां जघन्य क्यों लिया? यहाँ जघन्य लिखा तो यहाँ उत्कृष्ट लिखना था कि नहीं? उसका बहुत अच्छा, उसका जघन्य, क्योंकि यहाँ भी जघन्य से उत्कृष्ट तक वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ का जघन्य भी पल्ले का संख्या तो अभाव है और यहाँ का उत्कृष्ट सागरोपम पुस्तक है, हमने पहले देखा था, तो उसमें से जघन्य लिया, तो वो लिया है कि अपूर्वकरण का प्रथम स्थिति कांडक में से जो जघन्य वाला है तो उसको प्रथम जघन्य स्थिति कांडक संख्यात गुना है, वो भी संख्यात गुना है। यह भी पल्लोपम के संख्यात विभाग प्रमाण ही है, किंतु पूर्व सूत्र निर्दिष्ट यानी वो एकांत अनुवृद्धि के अंत में होने वाला है, तो वो पूर्व सूत्र निर्दिष्ट स्थिति कांडक से संख्यात हजार स्थिति कांडक गुणहानिया नीचे सरकर, देखो इसका अर्थ समझेंगे थोड़ा हम, यह अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्राप्त हुआ है इसलिए संख्यात गुणा सिद्ध होता है। अब ये संख्यात गुणहानियां नीचे 77 का उत्पाद से देखते हैं। यहाँ तो स्थिति कांडकों की बात चल रही है, वो कितना है तो पल्ले के संख्यात भाग प्रमाण है। ये अंत में जो होने वाले कांडक थे ना, इस पॉइंट पर हमने देखे, यहाँ पर कांडक हो गए, उसका प्रमाण कितना होगा? मान लेते इतना कांडक एक साथ ना है, वो जघन्य। अपूर्व कर्म की शुरुआत में कितना होता था जघन्य? वो इतना होता है, वो उससे संख्यात गुणा है। अब ये संख्यात गुणा हो तो उसको बताने के लिए कहते हैं, क्या हुआ बीच में, उनके बीच में संख्यात हजार स्थिति कांडक गुणहानिया नीचे तरफ तक, यहाँ जितना होता था कुछ नीचे ने हजारों बार ये चलता है ना स्थिति कांडक घात भी, तो कुछ स्थिति कांडक घात हम नीचे आ गए तो वहाँ उससे डबल था, और थोड़ा नीचे आ गए उससे भी डबल था, और नीचे आए उससे भी डबल था, उसके भी डबल था, तो एक गुणहानि, दो गुणहानि, तीन गुणहानि, चार गुणहानि, यहाँ कितने गुणहानियाँ नीचे आ गया? संख्यात हजार गुणहानियाँ बीत गई थी। उल्टा देखना है तो यहाँ का जो स्थिति कांडक था वो आधा, आधे का आधा, आधे का आधा, आधे का आधा, क्योंकि बहुत बार होने पर वो आधा हुआ, फिर बहुत बार होने पर उससे आधा हुआ, फिर बहुत बार हो, इस तरह से यहाँ तक पहुँचा। इसलिए कहते संख्या हजार गुणहानियाँ नीचे से रख कर, ये वहाँ का जघन्य है, वहाँ की उत्कृष्ट की बात तो बाद में करेंगे, इसलिए यह संख्यात गुणा सिद्ध होता है। ये 12 पॉइंट हो गए अपने, अभी भी हम कहाँ हैं? पल्ले के संख्यात विभाग। अल्प बहुत को समझाने के लिए कहते पलिदोवम संख्यज गुणा, उससे पल्लोपम संख्यात गुणा है, यानी एक जिसको हम कहेंगे माइलस्टोन बताने के लिए कि हम कहाँ थे, पल्ले के संख्यात विभाग थे, उससे पल्ले कितना है तो संख्यात गुणा है, यानी पल्ले प्रमाण यहाँ क्या टर्मिनोलॉजी है वो नहीं चल रही, पल्ले नाम की जो संख्या है वो इससे संख्यात गुणा है, इतना ही बताया। इतने 13 हो गए ना, अभी अभी उसके आगे का पढ़ेंगे। उपकस्यम त्रिखंडयम संख्यज गुण, जो अपूर्वकरण के शुरुआत में ही होता है, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक बहुत भेद है, जहाँ स्थिति बहुत बड़ी है वहाँ कांडक भी बहुत बड़ा होगा, तो अधिक से अधिक बड़ा कितना होगा? तो हमने पहले पढ़ा था कि सागरोपम पृथक
सागर,
और जघन्य कितना? पल्ले के संख्या वाला, तो पल्ले के संख्या से भाग से सागर पृथक्त्व कितना होगा, कितने गुणा होगा? मान लेते पल्ले का चौथा भाग समझने के लिए, और सागर पृथक्त्व यानी चार सागर, बहुत अच्छा, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो चार सागर में 40 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो जाए, पल्ले हो गए,
और उसको चार गुना,
पहले उससे यानी हमने पल्ले कौन से लेना है, तो उसके 40 कोड़ा कोड़ी गुना उसको कहेंगे संख्यात गुना।
पल्ले का संख्यात भाग 1/4 लेंगे तो
नहीं, नहीं हमने पल्ले 13वें नंबर पल्ले को लिया है, तो कहते उपकस्य हम स्थितिखंडे हम संख्यज गुणम, उससे उत्कृष्ट स्थिति कांडक संख्यात गुणा है, क्योंकि वह सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण है। वहाँ एक पल्ले से हम कंपेयर कर रहे हैं, 13वें पॉइंट पर एक पल्ले लिया था, और उससे यह सागरोपम पृथक्त्व कितना होगा तो संख्यात गुणा। आगे के कहते जघन्यो स्थितिबंधो संख्यज गुणो, उससे जघन्य स्थितिबंध संख्यात गुणा है। अभी जघन्य से पहले हमने जघन्य आबादा देखी थी, अब यहाँ जघन्य स्थिति बंद देख रहे हैं, वो भी कहाँ पर होगा? एकांत वृद्धि के लास्ट में होगा, क्योंकि एकांत अनुवृद्धि के अंतिम समय में होने वाले अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण जघन्य स्थिति बंद का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। उपकसो स्थितिबंधो संकेत गुणा, क्योंकि आबादा में भी हमने संख्यात गुणा का डिफरेंस देखा था, यहाँ स्थितिबंध में भी संख्यात गुणा का होगा, तो उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यात गुणा है, क्योंकि अपूर्वकरण के प्रथम समय में होने वाले स्थिति कांडक ने स्थितिबंध होना चाहिए यहाँ पर। स्थितिबंध का यहाँ ग्रहण किया है। स्थितिबंध की बात चल रही है ना, उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यात गुणा है। ऊपर क्या लिखा है? हाँ देखो, देखो यहाँ जो करेक्शन कहना चाहती है, 67 नंबर का पॉइंट लिखा है ना, क्योंकि अपूर्वकरण के प्रथम समय में होने वाले स्थिति बंध का चाहिए यहाँ पर, इसके लिए ऊपर का रेफरेंस बताती हो प्राकृत में। 67 में लिखा था खुद अपूर्वकरण पढ़म समय ठिरी बंध से गहना दो, हमने करेक्शन किया हुआ उसके लिए ऊपर रेफरेंस है। कांडक निकाल के स्थिति बंध कर, बंध कर, स्थिति तो लिखा ही है। आगे बढ़ेंगे, हो गया ना। हाँ। जहन्नयम थिदि संतकम्मम संख्य जिगुण, देखो यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध लिया था, अब क्या ले रहे हैं? जघन्य स्थिति सत्व ले रहे हैं, सत्ता की बात, क्योंकि जितना सत्व होता है उसके संख्यात्वे भाग प्रमाण बंध होता है, वहाँ सत्ता में ज्यादा पड़ी है, वे उससे जघन्य स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणा है। अब इसके लिए फिर ऊपर चले जाओ एकांत वृद्धि के लास्ट में, क्योंकि एकांतानुवृद्धि काल के अंतिम समय में होने वाला जघन्य स्थिति सत्कर्म यहाँ पर विवक्षित है।
ये एकांत अनुवृद्धि का लास्ट समय वाला कर्म लिया सत्व सत्व
नेचुरली। हाँ क्यों जघन्य लेना है?
एकांत कोड़ा पूरी करना
है। आपके एक प्रश्न क्या है? जघन्य स्थिति बंध कहाँ लिया था? जघन्य आबादा कहाँ ली थी?
नहीं, उत्कृष्ट स्थिति बंध हमने पहले समय में लिया अपूर्व करण के,
स्थिति बंध
हाँ अपूर्व करण के पहले समय।
हाँ, अभी स्थिति
उसके पीछे संख्यात हजार कांडक घात होते गए।
हाँ,
और पीछे सत्व कितना रहा?
यथा योग्य अंत कोड़ा करो। आपको प्रश्न क्यों इतनी उलझन
क्यों? क्योंकि इसका संख्यात का भाग यहाँ पे होता है।
किसका?
अपूर्व करण के पहले समय बंध कितना होगा, जितना स्थिति सत्व है उसका संख्यात होगा, और ये इसके पीछे संख्यात कांडक घात होते गए, तो कितने हजारों संख्यात कांडक घात होते गए।
संख्यात का प्रमाण बहुत हो सकता है ना,
हाँ, क्योंकि ये क्या, ये स्थिति कर्म जघन्य स्थिति कर्म लिया है वो एकांत
बंध लिया है।
हाँ, ये बंध लिया है और ये स्थिति सत्कर्म हमने एकांत अनुवृद्धि के लास्ट समय में
लेना है, वो
तो लास्ट समय में स्थिति
सत्कर्म
उससे संख्या गुणा
है ना। नहीं नहीं, अभी सूत्र में दिया है, उसके होने का दूसरा चांस ही नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पर सूत्र के अनुसार सोचो हमेशा।
नहीं नहीं, प्रश्न तो उठेगा
नहीं, उठने दो प्रश्न, उठने दो। यानी ये हमें संख्यात का एहसास नहीं है, हजारों बार होने पर भी, यानी वो ओरिजिनल कितनी ज्यादा होगी, हल में आती बात। तो यहाँ क्या कहे, जघन्य स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणा, यहाँ के उत्कृष्ट बंध से भी वहाँ का स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणा, ये बात बताना चाहते हैं, क्योंकि एकांतानुवृद्धि काल के अंतिम समय में होने वाला जघन्य स्थिति सत्कर्म यहाँ पर विवक्षित है। अब आगे चले।
अच्छा, कांडक तो खाली पहले का संख्या तो आता प्रमाण ही होता है, और वो संख्या सजा हो जाएगा तो भी वो
आप ही स्वयं बोल रहे
हैं। नहीं, अभी ख्याल में आ गया, पहले भी कांडक का प्रमाण बहुत ज्यादा पकड़ता था।
उपकस्यम स्थिति संतकम्मम संख्यज गुण, उससे उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म संख्यात गुण, यह अपूर्वकरण के शुरू में लेना, क्योंकि अपूर्वकरण के प्रथम समय में घात के बिना प्राप्त अंतर कोड़ाकोड़ी प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म का यहाँ ग्रहण किया है। देखो, अंतर कोड़ाकोड़ी से ज्यादा तो होगा ही नहीं, जघन्य को उत्कृष्ट को, क्योंकि हमने देखा था जो संयमा संयम प्राप्त करता है पहले स्थिति घात किए बिना प्राप्ति ही नहीं करते, ये बात बहुत स्पष्ट है। चौथे वाला प्राप्त करेगा पर पांचवे वाला नहीं कर सकता। फिर सोच रहे चौथे में जाने वाले के लिए ये घात करने की कंडीशन आवश्यक नहीं है। हमने आपको याद होगा पहले देखा था
70
कोड़ा कोड़े का बंद किया है, अंतर्मूर्त में विशुद्ध हुआ है केवल, और घात किए बिना उसने सम्यक तो प्राप्त किया। वैसे संयमा संयम के लिए वो नहीं है, उसके लिए तो
घात
तो इतनी स्थिति बांधी है तो दो करण हो गए ही उसके। उसके भी पहले अंतर्मूर्त में उसने अभी उसको प्रायोगल अभी नाम नहीं दिया,
नहीं दे सकते, पर वो बड़ा घात
अनंत गुणी विशुद्धि वाली वहाँ बात वहाँ भी चली। इन्हें स्थिति का घात करके ही संयमा संयम प्राप्त होगा, ये बात नक्की हो गई, इसलिए उसको भी अंत कोड़ा कोड़ी कहेंगे। ये
क्योंकि मिथ्यात्व में जाएगा वेदक सभ्यक दृष्टि और इतना बड़ा बंध किया है तो उसके अध प्रवृत्तकरण के पहले ही कांडक हो जाएगा ना, जो दो करण पूर्वक खाली पांचवा गुण स्थान प्राप्त करेगा।
हाँ।
उसको वहाँ पे प्रायोगिक लब्धि नाम नहीं दिया है,
नाम नहीं उसका है, भी पहले ही कांडक विशुद्धि वाली बात बताई है, वहाँ पर भी कांडक होते हैं,
एक ही कांडक होगा कि वो भी नंबर ऑफ कांडक होगा,
एक होगा वहाँ पर, एक होगा उसका स्थिति घात कर दिया उसने यहाँ पर, क्योंकि जो कांडकों की प्ररूपणा कंटिन्यूस चलेगी वो अपूर्व करण
से चलेगी।
यानी उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म लिया क्योंकि अपूर्वकरण के प्रथम समय में घात के बिना प्राप्त, यानी यहाँ होने वाले स्थिति कांड घात नहीं हुए उस समय की बात, यहाँ आने पर अपूर्वकरण से स्थिति कांड घात कंटिन्यूस चलेगा, परंतु चलेगे तब जाके उसकी स्थिति घटेगी, पहले समय में ज्यादा है ना उसकी बात। इस प्रकार सर्वप्रथम पदपूर्ति रूप बीज पदों के अवलंबन से इस अल्प बहुत्व का कथन कर पुनः संयता संयत विषयक ही दूसरी प्ररूपणा का आरंभ करते। पहले में पहले अल्प बहुत्व बता दिया, अब यहाँ कोई अन्य प्ररूपणाएं अन्य उसके संबंध में विशेष हमें व्याख्यान बताएंगे, माहिती बताएंगे।
ये इक्वेशन ये जो जगन्य स्थिति सत्कर्म का संख्यात गुण है उससे उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म संख्यात गुण है, वो चौथे गुण स्थान में भी सख्यात गुणा हो जाएगा ना।
चौथे गुण की बात, अच्छा चौथे अपूर्वकरण की बात चल रही है,
चौथे में जाने वाले के लिए सख्यात गुणा होगा कि उसकी इतनी सख्यात गुणी नहीं होगी।
फिर से प्रश्न,
नहीं यहाँ पे जगन्य स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणा है वो,
हाँ, वो एकांत अनुवृत्ति के
लास्ट समय
गुणस्थान पांचवा है।
हाँ,
अपूर्वकरण में गुणस्थान पूर्व का है, किसी का पहला होगा किसी का चौथा होगा,
चौथे वाले की संख्यात गुणी हो, चौथे वाले की भी संख्यात गुणी होगी,
हो सकती है ना, क्योंकि हजारों हजारों हो गए।
हाँ, चौथे वाले की संख्यात गुणी होगी कि पहले वाले की, क्योंकि चौथे वाले की, क्योंकि यहाँ पे आगे का जो
पद लेना है तो पहले वाले को ले लो उत्कृष्ट। हाँ, अपूर्व करण में भी उत्कृष्ट, अभी उत्कृष्ट में और भी उत्कृष्ट करना है तो गुणित कर्मांशिक वाला ले लो, फिर यथा जो उसने तो पहले वो उत्कृष्ट की कंडीशन बता चुके हैं, पहले वाले को उत्कृष्ट होगा, अभी वो पहले से डायरेक्ट पांचवे में जाने वाला है, गुणित कर्मांशिक वाले को लिया था पहले उन्होंने, यानी उत्कृष्ट के लिए जो कंडीशन आवश्यक है वो वहां पर ले लो। अब कहते हैं ये अल्पभूत्व यहाँ पर समाप्त हुआ, संयमा संयम का ही जो विशेष व्याख्यान करने की पद्धति है उसमें अलग अलग आठ पद्धति से आठ अलग अलग एंगल्स से अपेक्षाओं से उसका वर्णन चलेगा, उसको अनुयोग द्वार कहते हैं। तो कहते हैं संजदा संजदानम अठ अनियोग दाराणी तम जहा संत परुणा दवपमानम खेतम पोषणम कालो अंतरम भागा भागो अप्पा बहुवं च संयता संयत विषयक आठ अनियोग द्वार ज्ञातव्य, अनियोग द्वार है ज्ञातव्य, ज्ञातव्य है चाहिए है, बाद में लेना पहले चला गया। ज्ञातव्य के बाद है चाहिए, यथा हमेशा ही किसी विषय का अभ्यास करना है तो उसमें यह इसे अलग अलग अनियोग द्वार होते हैं, आइए देखो यहाँ हमने जो सूत्र अभी पढ़ा
इधर
हिंदी में पढ़ते उसको फिर से उनके साथ देखना देखो हमने तत्वार सूत्र में भी देखा ना किसी विषय का अभ्यास करना है तो उसको इन आठ पद्धतियों से समझना चाहिए भले सम्यक को समझना है तो उसके ऊपर भी आठ बातें लगाएंगे अन्य कुछ समझना है तो भी आठ बातें कौन सी आठ बातें हैं तो यहाँ अपना विषय तो संयता संयता ने पांचवें अनुष्ठान प्राप्त करने वाले की बात कर रही है तो यहाँ आठ अनुयोग द्वारा ने आठ अलग अलग एंगल से इसको समझेंगे अपेक्षाओं से कौन सी वो यथा सत प्ररूपणा सत प्ररूपणा का अर्थ होता है उसकी अस्थि उसकी है इतना बताना तो संयमा संयम है उसमें इतने स्थान है ऐसी बातें करेंगे वो तो उसकी सत प्ररूपणा होगी द्रव्य प्रमाण का अर्थ होता है संख्या तो पांचवें गुणस्थान वालों की संख्या कितनी है या उनके स्थानों स्थान कितने हैं वो जो कुछ यहाँ विषय चलेगा उसकी बात चलेगी क्षेत्र का अर्थ ये संयमा संयम प्राप्त करने वाले जीव कितने क्षेत्र में रहेंगे उसको कहेंगे क्षेत्र कौन से गति वाले जीव पांचवें गुणस्थान वाले होंगे बहुत अच्छा मनुष्य गति और तिर्यंश है ना तो तिर्यंश गति का क्षेत्र वर्तमान का कितना होगा लोक का संख्या होगा क्यों ये तो ढाई द्वीप में है और लास्ट में स्वयं रमन द्वीप और समुद्र द्वीप का उत्तर भाग और समुद्र में है फिर भी पूरे लोक का वो असंख्या भाग है जगन्य भूमि में गुणस्थान चौथा होगा बीच में असंख्यात द्वीपों में तिर्यंश तो है वहाँ कोई मनुष्य नहीं है समुद्रों में कोई तिर्यंश भी नहीं है तिर्यंश है पंचेंद्रीय तिर्यंश समुद्र इटसेल्फ एकेंद्रीय तिर्यंश है इसकी बात नहीं है परंतु वहाँ के सभी द्वीपों में जगन्य भूभूमि है तिर्यंशों की और गुणस्थान तो उससे ज़्यादा नहीं होता एक दो तीन चार गुणस्थान वहाँ पाए गए यहाँ बात किसकी चल रही है संहिता संयत की संहिता संयत वालों तो उसका क्षेत्र का उनका रहने का जो ठिकाना है उसको क्षेत्र कहेंगे आगे लिखा है स्पर्शन स्पर्शन का अर्थ होता है क्षेत्र में तो वर्तमान में कहाँ रहते हैं उसको क्षेत्र कहते हैं और स्पर्शन में अनादि से लेकर कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं कहाँ कहाँ घूमते उसको कहेंगे विहार व प्रस्थान क्षेत्र विहार करके जा सकते हैं या मारणांतिक करके कहाँ जा सकते हैं कहाँ से मरकर आते उसको कहेंगे उपपात विक्रिया करके कहाँ जा सकते हैं उसको कहेंगे वैक्रिय वो स्पर्शन में सबको लेना जो दस पद बताए ना ये दस पद याद है अश्विन भाई आप बता जब हम हाँ जब जीव किसी का क्षेत्र या स्पर्शन निकालना है तो दस पद की अपेक्षा हम विचार करते हैं पहला तो स्वस्थान जहाँ रहते हैं उसको स्वस्थान कहते हैं दूसरी बात है विहार व स्वस्थान कहाँ तक विहार करते हैं ये अपेक्षा मुख्यतः देवों में लगती है क्योंकि देव तो अपने अपने स्वर्गों में रहते हैं परंतु नीचे विहार कर तीसरे नरक पर जाते हैं कहाँ तक के देव जाते हैं सहस्रार तक के जाते
तक के
सोलहवें तक के विहार करते हैं परंतु मध्यलोक में आते हैं नरक में नहीं जाते वो नीचे नहीं जाएंगे मध्यलोक में सर्वत्र विहार कर जाते तो विहार की अपेक्षा उनका होगा तो एक हुआ स्वस्थान रहने की अपेक्षा विहार फिर उसके समुद्घात अलग अलग एक है वेदना समुद्घात एक है कषाय समुद्घात एक है मारणांतिक मारणांतिक यानी मरने के पहले एक अंतर्मुर्त पहले जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक आत्म प्रदेश फैले रहते ऐसे फैले रहते और जब यहाँ की आयु पूरी होती है तो यहाँ से प्रदेश निकल कर उसी रूट में वो चले जाते हैं जहाँ जन्म लेना है तो वो भी जीव के प्रदेश फैले है उसको भी जीव का स्पर्शन में क्षेत्र कहेंगे अतीत काल की अपेक्षा वो जैसे तिर्यंश है वो मरकर सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं पांचवें गुणस्थान वाले तो उनका स्पर्शन कितना कहेंगे सोलह स्वर्ग कितने राज्य ऊपर है छह राज्य ऊपर है ना तो चौदह भाग में से छह भाग कहेंगे इस तरह से सोचना अब ये उसको कहेंगे स्पर्शन एक है काल संयता, संयता काल का अर्थ क्या है? पांचवे गुणस्थान में रहने का काल,
उत्कृष्ट
काल में जघन्य काल भी कहेंगे, उत्कृष्ट काल भी कहेंगे। जघन्य काल में कोई जीव चौथे से पांचवे में आया या पहले से पांचवे में आया, मिनिमम पॉसिबल कितने काल तक रह सकता है? क्या एक दो समय रहेगा? अंतर्मुहूर्त रहेगा ही, उसको जघन्य काल कहेंगे। और अधिक से अधिक लंबे काल तक रहेगा तो जब से प्राप्त किया मरण तक रहेगा ना, तो कितना हो सकता है?
कुछ कम
मनुष्य की अपेक्षा। पूर्व कोटि में आठ वर्ष कम, क्योंकि आठ वर्ष के पहले सैमा सैम नहीं प्राप्त कर सकते, तो कुछ कम पूर्व कोटि, क्योंकि कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि की है। भोग भूमि में मनुष्य तीरेज है, परंतु वहाँ तो चौथा ही गुणस्थान है, पांचवा नहीं होता, इसलिए पांचवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि। तीर्यंच में वेदक सम्यक तो प्राप्त करने वाले जो सम्मूर्छन तीर्यंच होते, उनके अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो हो सकता है। सम्मूर्छन ने वो गर्भ में पैदा हुए नहीं है, एक अंतर्मुहूर्त में वो पूरे संगी पंचेंद्रिय जीव तैयार होते हैं, और उनमें जो कोई साधी मिथ्या दृष्टि पहले सम्यक तो प्राप्त करके छूट कर अभी तीर्यंच में आया है, तो उसके वहाँ वेदक सम्यक तो सूक्ष्म सम्यक तो हो सकता है एक अंतर्मुहूर्त में, उसका पूर्व कोटि में एक अंतर्मुहूर्त कम, इतना उत्कृष्ट का एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा ही पाए जाएंगे, क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाले मनुष्य भी निरंतर पाए जाएंगे और तीर्यंच भी हमेशा ही होंगे, क्योंकि पूरी विश्व की बात चल रही है, जहाँ वही एक पूर्व कोटि उनकी उत्कृष्ट आयु है कर्मभूमि की, और अंतर्मुहूर्त में कोई प्राप्त कर सकता है तो वो अंतर्मुहूर्त माइनस कर दो, बाकी रिमेनिंग जो है वो पूर्व कोटि का। वो अंतर्मुहूर्त कौन सा? उसकी पर्याप्ति पूरी हो गई, उसने अभी भव धारण कर लिया और एक अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि बढ़ी और उसको पांचवा गुणस्थान है। उसके बाद अंतर, अंतर का अर्थ होता है विशिष्ट गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में चला जाए और वापस लौट कर आए, तो बीच में कितनी गैप पड़ी। जैसे कोई पांचवें गुणस्थान वाला है, वहां से छूट कर कोई चौथे में गया, कोई पहले में गया, या कोई पांचवें में से मुनिराज हो गए सातवें में चला गया और वापस लौटकर पांचवें में आए, तो अतिशीघ्र कितने जल्दी में जल्दी आ सकता है? तो अंतर्मुहूर्त, अभी हमने उसको देखा था, ऐसे छह काल समान होते हैं, जगह ने उसकी बात देखी थी ना, अभी अंतर्मुहूर्त में लौट कर आ सकता है, उसको कहेंगे अंतर। और लंबे में लंबा अंतर कितना होगा? बहुत अच्छा, किसी जीव ने मोक्ष प्राप्ति के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले सम्यक तो प्राप्त किया, पांचवा गुणस्थान भी प्राप्त, वहां से छूटकर मिथ्यात्व में चला गया, और अधिक से अधिक लंबा अभी कितना भटकेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ कम, अंत में आया मनुष्य भव धारण किया, फिर उसने आठवें साल में पांचवा गुणस्थान, ये उसको लंबा और खींचना, अंत में जाके पांचवा गुणस्थान भी प्राप्त किया, फिर संयम भी प्राप्त किया, श्रेणी भी चढ़ी और मोक्ष चला गया, तो इसका लंबा में लंबा अंतर हो गया, ये उसको अंतर कहते हैं। भागा भाग का अर्थ होते अल्पभूतों में छोटे से बड़े तक देखे, भागा भाग में कितने भाग प्रमाण हैं? पांचवें गुणस्थान वाले जीव सभी अनंत जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? बोलो, अनंत विभाग। उनकी संख्या कितनी पूछी जाएगी तो हम कहेंगे असंख्या, परंतु वो टोटल जीवों के कितने भाग प्रमाण है तो अनंत विभाग, ये भागा भाग में होगा। अल्प बहुत्व तो हमने देखा ही है, तो उसमें भी पांचवें गुणस्थान वालों का भी अल्प बहुत्व उस अपेक्षा से बताएंगे, ये तो ये हमने सूत्र पढ़ा, अभी इसका विस्तार से व्याख्यान होगा, हमें पढ़ेंगे आगे। ये 70 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं, संयता संयत यानी वो देश संयत कहो, पांचवा गुणस्थान कहो, उनकी प्ररूपणारूप प्रयोजन होने पर, प्ररूपणा करना यानी व्याख्यान करना, विस्तार से कथन करना, यह हमारा प्रयोजन है, यह हम चाहते हैं, यानी संयता संयतों का व्याख्यान करने के लिए ये आठ अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है, यानी जानना चाहिए, यानी ये आठ अलग अलग पद्धति से व्याख्यान जानना चाहिए, अन्यथा तद विषयक विशेष निर्णय नहीं हो सकता। हमें तो तत्वार्थ का निर्णय करना है, तत्वार्थ सूत्र में भी बातें हैं, क्योंकि निर्णय करना फॉरमोस्ट कंडीशन है, आवश्यक कंडीशन, क्योंकि अपना स्वरूप का निर्णय करना है, तत्व का निर्णय करना है, उसके बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। पूरे मोक्ष मार्ग का भी निर्णय करना है, चौथे गुणस्थान का स्वरूप क्या है, पांचवे का क्या है, मुनि का स्वरूप क्या है, श्रेणी का स्वरूप क्या है, अरिहंत का स्वरूप क्या है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, जो हमें प्राप्त करना है उसका स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ऐसा जब तक निश्चय नहीं होता तब तक सम्य दर्शन नहीं होगा। उस दिन हमने बहुत चर्चा की ना, वो विशेषार्थ में कुछ लिखा था, ये निर्णय पूर्वक ही अंतरंग में स्थिरता हो सकती है। देखो देखो निकालो, वन वन थे ना आपको, पेज नंबर भी याद है? हाँ, वो बड़ा विशेषार्थ हमने देखा था,
110
पृष्ठ पर। हाँ, 110। हाँ देखो, वहां पर नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका आशय यह है कि मिला, जब यह जीव ये सम्यक प्राप्ति कैसे हो सकती, पूरा एक दो चार लाइन में पूरा ही उन्होंने रहस्य भर दिया कि जब यह जीव अपने उपयोग परिणाम में यानी अपने ज्ञान के पर्याय पर के अवलंबन से मुक्त होकर, अनादि से ये क्या कर रहे हैं तो पर का ही अवलंबन है, बार बार पर में उसका उपयोग जाता है, क्यों, पर की महानता भाषित होती है, जिसकी महानता भाषित होती है वहां उपयोग गए बिना रहेगा ही नहीं। तो कहते पर का अवलंबन से मुक्त होकर मात्र, आगे लिखना था कि स्वसन्मुख होता है, उसके बीच में एक कंडीशन डाल दी, स्वभाव के निर्णय पूर्वक, जिसको स्वभाव का निर्णय नहीं है, ये स्वभाव के निर्णय में वो सब ले लेना, नौ पदार्थों चार तत्वों का निर्णय, देव का निर्णय, तो स्वभाव के निर्णय स्वभाव के निर्णय पूर्वक उसके सम्मुख होता है, स्वभाव के सम्मुख होता है, तभी स्वभाव भाव की प्राप्ति होती है, तभी स्वभाव भाव की प्राप्ति होती है। स्वभाव तो अनादि से है इसके, पर स्वभाव भाव यानी पर्याय में स्वभाव जैसी पर्याय प्रकट होना, स्वभाव पर्याय प्रकट होना कहो, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र कहो, वो प्रकट होता है, अन्यथा नहीं। इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि बुद्धिपूर्वक यानी सोच समझ कर स्वभाव भाव की प्राप्ति में यानी जीव को क्या करना है, जीव का अपने उपयोग परिणाम के द्वारा ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्म सन्मुख होना परम आवश्यक है। परंतु सन्मुख को केवल उपयोग को खींच कर अपने में ले जाओ नहीं होगा, उसके लिए स्वभाव का निर्णय आवश्यक है, क्योंकि अभी मान्यता में बहुत सारी भूलें चल रही है और हम ध्यान करके अपने अनुभव करें ये बात तीन काल में नहीं हो सकती, ये फॉरमोस्ट कंडीशन है। ये स्व पर स्व का निर्णय, पर का निर्णय, भगवान देव गुरु शास्त्र का निर्णय, सभी जो उपदेश की बात हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं आपके लिखा ना, इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन आदि स्वभाव भाव की प्राप्ति के समय जीव का उपयोग अन्य अशेष विषयों से हटकर एकमात्र स्वभावभूत आत्मा में ही युक्त रहता है। हमारे ये आत्मा में उपयोग रहता है, कौन सा आत्मा, वहां से आवाज आ रही
है, हेलो हेलो हेलो, आवाज इसी में
ठीक है, और पांच में तो कहते हैं स्वभावभूत आत्मा में ही युक्त रहता है, स्वभावभूत आत्मा ने स्वभाव में उसने उपयोग जोड़ा है, तो हम कहाँ जोड़ते हैं, रागी द्वेषी आत्मा में, हमने आत्मा को रागी द्वेषी ही मान लिया, वही हमारा कायमी स्वरूप मान लिया है और उसी में हम लीन रहते हैं कि हमको ये राग छोड़ना है, वो राग करना है, शुभ छोड़ना है और शुभ करना है। तो यहाँ कहते हैं निर्णय बहुत आवश्यक है, ये हम यहाँ आए थे ना, हमने जो पढ़ा यहाँ पर कि ये आठों ही अनुयोग द्वार क्यों जानना चाहिए, तो तद विषयक विशेष निर्णय नहीं हो सकता, इसके बिना किसी भी विषय को समझना है तो ये जो सत है, संख्या है, क्षेत्र है, स्पर्शन है, काल है, अंतर है, भागा भाग अल्पभूत, इन सभी आठों ही प्रकार से जानना आवश्यक है। शंका, गाथा सूत्र में ये आठ अनुयोग द्वार निबद्ध नहीं है, सूत्र गाथा जो हमने पढ़ी थी इसमें तो ये आठ अलग अलग नाम नहीं बताए थे, फिर उसके बिना उनकी यहाँ प्ररूपना कैसे की जाती है? उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूचना मात्र में व्यापार करने वाले गाथा सूत्र की, सूत्र कहो या गाथा सूत्र कहो, उनकी विशेषता ये होती है मिनिमम अक्षरों में, शब्द भी नहीं कहा अक्षरों में, मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में मैक्सिमम पॉसिबल उसमें अर्थ पूरा ही गर्भित कर देते, उसको सूत्र कहेंगे या गाथा सूत्र कहेंगे। ये जो तत्वार सूत्र के भी जो सूत्र हैं उसके ऊपर जो टीकाएं हैं राजवार्तिक है अन्य अन्य, उसमें इतनी बहस की ये च शब्द च अक्षर क्यों डाला, इसके बिना क्या नहीं हो सकता था, ऐसे ऐसे उसमें बहुत चर्चा है। ये सूत्र की विशेषता होती है, एक होते हैं सूत्र, एक होते हैं उसके ऊपर जो डिटेल जो टीकाएँ होती है, उसमें तो चूर्णी सूत्र होते हैं, सूत्र होते हैं, फिर उसके ऊपर उच्चारणा होती है, उसके ऊपर वाचना होती है, अलग अलग उसके लेवल पर उसका वार्तिक भी होते हैं, तो ये उसका स्वरूप अलग अलग है। तो यहाँ कहते हैं ये लगाओ कहीं वो लगाओ, हाँ सूचना मात्र में व्यापार करने वाले गाथा सूत्र की संयता संयत विषय अशेष प्ररूपणा में, अशेष यानी बाकी की प्ररूपणा में उपलक्षण रूप से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। उपलक्षण यानी फॉर एग्जाम्पल कह के एकाध बता देंगे, बाकी सब उसी से गर्भित है ऐसा समझ लेना, किंतु इनका विशेष व्याख्यान सुगम है इस अभिप्राय से चूर्णी सूत्र में इसका विवेचन नहीं किया, क्योंकि ये विषय बहुत चला है ना धवला में जयधवला में अभी तक, तो कहते यहाँ पर उसका विशेष व्याख्यान नहीं किया, जो अभी हमने अभी देख लिया था ऊपर, ऐसा यहाँ विशेष व्याख्यान नहीं बताया, इसलिए वहाँ पर जीव स्थान में की गई प्ररूपणा के अनुसार आठ अनुयोग द्वारों की प्ररूपणा जानकर करनी चाहिए। धवला में जो जीव स्थान नामक जो वहाँ प्ररूपणा चली थी जीवोत्थानम, तो वहाँ जैसा इसका सब पूरा विस्तार से बताया है वो यहाँ भी जानना चाहिए। विशेषण, यहाँ संयता संयत जीव संबंधी उक्त आठ अनुयोग द्वारों का अवलंबन लेकर कथन करते हैं। यहाँ सत प्ररूपणा ये विशेषार्थ में अलग से बताया है, मूल वीरसेन स्वामी ने इसको नहीं बताया, ना ही चूर्णी सूत्र ने बताया है, यहाँ तो विशेषार्थ में पंडित जी फूलचंद जी शास्त्री और कैलाश चंद जी शास्त्री इन्होंने ये विशेषार्थ लिखा है। तो कहते ओघ से संयता संयत जीव है, ओघ का अर्थ समझती हो तेजल? बहुत अच्छा, गुणस्थान। एक होता है योग, गुणस्थान कहो या सामान्य से कहो, और आदेश यानी विशेषता। तो कहते ओघ से क्या कहेंगे, संयता संयत जीव है बता दिया, ये सत प्ररूपना हो गई। आदेश से यानी अभी मार्गणाओं की अपेक्षा नहीं, गति मार्गणा की अपेक्षा बताएंगे, तीर्यंश गति और मनुष्य गति में संयता संयत जीव। पहले सामान्य से क्या कह दिया, संयता संयत वाले जीव है, फिर क्या बताया, तीर्यंश गति में और मनुष्य गति में। संख्या, ओग से यानी सामान्य से पहले बात करेंगे विदाउट डिफरेंशिएटिंग, संयता संयत जीव पल्लोकोम के असंख्यातवे भाग प्रमाण। आदेश यानी भी मनुष्यों में कितने और तीर्यंशों में कितने बताएंगे, आदेश से तीर्यंश गति में संयता संयत जीव पल्लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण है, और मनुष्यों में कितने हैं तो संख्यात है, क्योंकि पर्याप्त तो मनुष्य ही संख्यात है। हाँ, आपका कहना उनकी संख्या मैक्सिमम संख्या कितनी है, याद है अरविंद? हाँ, मनुष्य 13, बहुत अच्छा 13 करो, क्योंकि उनकी 13 ली थी, उससे फिर नीचे है ना 52 करोड़ दूसरे के, 104 करोड़ तीसरे के, चौथे के 700 करोड़, ये किसी समय में मैक्सिमम संख्या इतनी हो सकती उसकी बात। क्षेत्र, ओग से स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना, अभी हमने इसकी बात देखी थी ना, कषाय वैक्रिक और मारणांतिक पद की अपेक्षा संयता संयत जीवों का क्षेत्र ने वर्तमान का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण। इसी प्रकार आदेश से तीर्यंश गति और मनुष्य गति में भी यथासंभव पदों की अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए। स्पर्शन के अर्थ होता है अतीत काल की अपेक्षा। वो उसे संयता संयत जीवों ने स्वस्थान विहारवत वेदना कषाय और वैक्रिक पदों की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। मारणांतिक की अपेक्षा कुछ अलग बात बताएंगे। मारणांतिक की अपेक्षा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। आदेश से तिर्यंच गति में इसी प्रकार जानना चाहिए। तिर्यंचों की अपेक्षा क्यों ली? क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाले तिर्यंच वो स्वयं भ्रमण वाले मरकर ऊपर 16वें स्वर्ग तक जन्म लेंगे ना, तो उसके पहले मारणांतिक भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा लगाई। परंतु मनुष्य गति में संयता संयतों ने संभव सब पदों की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। क्या मनुष्य नहीं जा सकते 16वें स्वर्ग तक पांचवें गुणस्थान वाले? यदि द्रव्य लिंग धारण किया हो तो ग्रहवेग तक भी जा सकते, तो उसको यहाँ क्यों नहीं लिया? मनुष्य को तीर्यंच को लिया 6 राज्यों तक और मनुष्य को नहीं लिया। नितिन भाई बताएंगे आप? नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। मंजू, मनुष्य अभी वर्तमान में कितने कहाँ रहते हैं? 45 लाख। ऊपर जाएंगे तो उतने में से ही जाएंगे ना, क्या ऐसा करके जाएंगे? मारणांतिक भी होगा तो सीधा ऊपर चले जाएंगे, देव में जाना है ना उनको। और तिर्यंच कहाँ तक देखे? पूरे राजू तक, यानी वो स्वयं भ्रमण तक थे, इसलिए वहाँ ऐसे अंदर आके फिर ऊपर जाएंगे या ऐसा जाके फिर यथायोग्य विमान में चले जाएंगे, इसलिए उनका तो पूरा त्रस नाली के 6 भाग लिए उन्होंने। मनुष्य में जाएंगे तो भी बीच वाले 45 लाख योजन में से ऊपर चले जाएंगे, तो वो लोग का संख्या का भाग जाएंगे ऊपर, तो ग्रहवेग तक भी जा सकते हैं। पांचवा गुणस्थान इसलिए नहीं, पर बाह्य में द्रव्य लिंग धारण किया हो तो वहां तक जा सकते हैं। यही रुकेंगे अभी हम। क्षेत्र तक हमने देखा ना, काल की बात करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते दूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नो सदा देश हो। अश्विन।